तिलावत आपने सुनी और आप देखें कि लफ्जी तर्जमा अल्फाज की वजाहत के बाद तिलावत जो है वो उसे ये देखना भी मकसद है कि कितनी समझ आ रही है और हम उसको कितना अपने अंदर जो है वो जज्ब करते हैं। और मजीद इन आयात को फिर देखते हैं कि ये आयात हमें क्या पैगाम देती हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, फमन यरगबु अम मिल्लत इब्राहीम इल्ला मन सफीहा नफसा। अब कौन है जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के तरीके से नफरत करे, जिसने खुद अपने आप को हमाकत में मुब्तिला कर लिया हो, अपने आप को जहालत में मुब्तिला कर लिया हो। तो यहाँ पर जो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम का खास तौर पे जो है वो जिक्र किया जा रहा है, और इसकी बड़ी वजह क्या थी कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो थे वो इमाम थे, और दूसरी बात ये है कि यहूदी भी उनको मानते थे, ईसाई भी उनको मानते थे, और मक्का के मुशरिक भी उनको मानते थे। वो सब ये कहते थे कि हम उनकी औलाद में से हैं। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो हैं उन्होंने अपने तर्ज फिक्र को और अपने तर्ज अमल को, अपनी पूरी की पूरी जिंदगी को अल्लाह ताला की मर्जी के मुताबिक बनाया था, और पूरी जिंदगी उसी की अशात में, उसी की तबलीग में आपने गुजारी, और इस रास्ते में बड़ी तकलीफें बर्दाश्त की, बड़ी खंदा पेशानी के साथ, बड़े सब्र व इस्तकलाल के साथ, और अल्लाह ताला को आपकी ये अदा, आपका ये तर्ज जिंदगी इतना पसंद आया, इतना अच्छा लगा कि अल्लाह ताला ने एक तरफ आपको पूरी दुनिया का इमाम बनाया और दूसरी तरफ एक क्वेश्चन मार्क, एक सवाल जो है वो सबके सामने रख दिया कि अब कौन बेवकूफ है, कौन जाहिल है, और कौन ऐसा है जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के तरीके को छोड़कर कोई और तरीका इख्तियार करे। गोया के जो भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के तरीके को छोड़कर कोई दूसरा तरीका इख्तियार करेगा तो कौन है वो बेवकूफ है, वो कम अकल है, वो हल्का है, उसको इस बात की समझ ही नहीं है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तरीका जो था वो कितना अच्छा तरीका था, है ना। तो यहाँ पर भी इसी चीज की तरफ इशारा है, और अल्लाह ताला कहते हैं वाला कदिस्तफैना हु फिर दुनिया। इब्राहिम तो वो शख्स है जिसको हमने दुनिया में अपने काम के लिए चुन लिया था, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी जात में एक उम्मत थे, उन्होंने अकेले वो काम किया जो एक कौम के करने का है, जो एक उम्मत के करने का है। तो यहाँ पर जिस चीज की तरफ तवज्जो दिलाई जा रही है वो क्या है, वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का के तौर तरीके, उनकी बंदगी के अंदाज, उनके अल्लाह ताला की अताअत करने के तरीके। इब्राहिम अलैहिस्सलाम वो थे जिनको अल्लाह ताला कहते हैं कि उनकी पाकी की वजह से, उनके शिर्क की बेजारी की वजह से जो है मैंने उनको चुन लिया था, उनको इमाम बनाया था। और क्या है, व इन्नहु फिल आखिरति लमिनस सालिहीन, पर आखिरत में भी उनका शुमार सालहीन में से होगा, नेक लोगों में से होगा, वो अल्लाह के पसंदीदा बंदों में से होंगे। तो अब यहां पर जो है ये बात बताई जा रही है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है दुनिया में भी उनका मकाम कितना अच्छा है कि मुस्तफा, चुने लोगों में से, और आखिरत में भी वो सालहीन में से होंगे, अनअम तालहिम, यानी जिन पर मैंने इनाम किया। हालांकि अंबिया ही सालहीन में से होते हैं, है ना, लेकिन अंबिया ही चुने हुए में से हैं, लेकिन सालहीन में से भी वो थे। सालहीन में शामिल होना ये बहुत सआदत की बात है, और पैगंबरों ने इसके लिए दुआएं भी की हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की दुआ बहुत अच्छी है, या रब्बे समावाती वल अर्द अंता वली फी दुनिया वल आखिरा तवफ्फनी मुस्लिमा व अल्हिकनी बिस्सालिहीन। तो इसमें भी क्या है कि मुझे सालहीन में शामिल कर, मौत दे तो किस हाल में कि मैं इस्लाम की हालत में मुझे मौत आए, मरूं तो कलमा पढ़ते हुए मरूं, मरूं तो तेरी ही अताअत करते हुए इस दुनिया से रुखसत हूं, लेकिन जब मर जाऊं तो मेरा शुमार सालहीन में हो। तो इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमें ऐसी दुआएं मिलती हैं जैसे कोई दस्तरखान पर खाना खाए, अफ्तरा इंदा कुमुस्साइमून वसल्लत अलैकुमुल मलाइका व अकलत तुआमकुमुल अबरार, के रोजेदार तेरे घर रोजा अफ्तार करें, फरिश्ते तुम्हारे दस्तरखान पर मसाफिया करें और नेक लोग तेरे दस्तरखान पर खाना खाया करें। तो रोजेदार तो खुद ही नेक होते हैं, रोजेदारों को बुलाना, अफतारी करना और इसी तरह करवाना, इसी तरह जो है वो नेक लोगों का खाना होना। तो असल में होता यह है कि हम खाने पे उन्हीं को बुलाते हैं जिनसे हमारी दोस्ती होती है, जिनसे हमारा ताल्लुक होता है। एक सहाबी कहा, आपने कुछ खाया तो उसको ये दुआ दी, अफ्तरा इंदा कुमुस्साइमून वसल्लत अलैकुमुल मलाइका व अकलत तुआमकुमुल अबरार। नेक लोग तुम्हारा खाना खाया करें, कितनी खूबसूरत दुआ है। तो इसका क्या मतलब है? नेक लोगों से दोस्ती करनी चाहिए, अपनी भी और बच्चों की भी, और नेक लोगों के यहाँ हमारा चलत फिरत और रहन सहन हो, क्योंकि फिर सिबगा आ जाता है, उसके बड़े अच्छे असरात आते हैं। इसी तरह एक सहाबी के घर आपने जब कुछ खाया उससे, तो फिर आपने उनके लिए भी दुआ की, अल्लाहुम्मा बारिक लहुम फी मा रज़क़तहुम वग़फिर लहुम वरहमहुम, कि अल्लाह ताला इनकी मग़फ़रत फरमा, इन पर रहम फरमा घर वालों पर। और फिर अगली बात क्या थी कि इनकी अल्लाहुम्मा मग़फिर लहुम अल्लाहुम्मा बारिक लहुम फी मा रज़क़तहुम, यानी रिज़्क़ में बरकत भी दे। तो पहली दुआ जो आपने की वो रिज़्क़ में बरकत की दुआ है, फिर मग़फ़रत की दुआ है और रहम की दुआ है, तो ये भी दुआ है। तो इस तरह यानी गोया के जब हम कहीं कुछ खाने जाएं, दावत पे जाएं, तो उसके भी कुछ हमें आदाब मिलते हैं, और उसमें भी ये समझ में आती है कि सवालहीन या सोबत सवाले ये बड़ी चीज है। तो यहाँ पे भी अल्लाह ताला ये ऐलान कर रहे हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो थे वो सवालहीन में से थे, दुनिया में भी और आखिरत में भी। और नींद नहीं किसी को आने की इजाजत। फिर फरमाया इसका लहू रब्बहू अस्लिम, जब इसके रब ने इसे कहा कि अस्लिम, सरे अतात झुका दे, यानी मुसलमान हो जा, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फौरन क्या कहा, قال اسلمت لرب العالمين, कि मैं जो है वो मालिक कायनात के लिए मुसलमान हो गया। اسلمت, मैंने अपना आप अब अल्लाह के सुपुर्द कर दिया। तो सही मुसलमान कौन होता है? हर वक्त हर जगह हर बात अल्लाह के हुक्म के मुताबिक और रसूलुल्लाह के बताए हुए तरीके के मुताबिक करना। ये नहीं कि जवानी में नहीं करेंगे तो बुढ़ापे में करेंगे, ये तो ईट ड्रिंक मैरी एंड डाई के दिन है ना, ईट ड्रिंक मैरी एंड डाई जवानी के दिन है। जवानी दर जवानी तौबा कर दन शेवाए पैगम्बरी, पैगम्बरों ने जवानी में तौबा की, जवानी में वो नेकियों की तरफ आए। इसी तरह हम लोग कहते हैं कि नहीं, अमेरिका और कैनेडा में नहीं इस्लाम पे चल सकते, कहीं सऊदीया या मस्जिद में हम चलेंगे। कुछ लोग कहते हैं मस्जिद में ठीक है, जो ही मस्जिद से बाहर निकले अदाएं मुख्तलिफ हो जाती है ना। तो हम जैसे हमने कुछ जगह कुछ चीजें कुछ फंक्शन मखसूस कर लिए हैं, तो क्या है कि हर वक्त जो है हमें अल्लाह की बंदगी करनी है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने कहा कि असलिम, ये ऑर्डर का सिगा है कि आप जो है वो मुसलमान हो जाइए, यानी अल्लाह की अतात कबूल कर लीजिए, तो उन्होंने फौरन कहा कि मैं अल्लाह के लिए, रब के लिए जो है वो ऐसा रब जो दोनों जहानों का है, उसके लिए मैं सरे अतात खम करता हूं। तो इस दुनिया का रब भी और सारी जो दुनिया है उनका रब भी। फवस्सा बिहा इब्राहिम बनी ही व याकूब, और यही इस्लाम की जो वसीयत थी, ये ताकीदी हुक्म जो है वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी औलाद को कर गया, व याकूब, और याकूब अलैहिस्सलाम ने भी यही जो है वो वसीयत की। तो वसा वसीयत, वसीयत जो है ये बहुत अहम चीज है कि इंसान जो है वो वसीयत जो है वो क्या है कि इंसान जो है वो आमतौर पे हमारे यहाँ है ना कि मरने वाला जो है वो वसीयत करता है ना, और बाज़ औक़ात जरूरी नहीं कि मरते वक्त जो बात कही जाए वही वसीयत होती है। वैसे जिंदगी में भी जो है अहम बातों के लिए हम वसीयत कर सकते हैं, औसा वसीयत करना। एक हदीस भी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी मुसलमान पर दो रातें ऐसी नहीं गुजरनी चाहिए कि इसके पास वसीयत के काबिल अशिया और अमूर के बारे में लिखी हुई वसीयत मौजूद ना हो। कि दो घड़ियां दो रातें ऐसी नहीं गुजरनी चाहिए कि मुसलमानों ने अपने लिए वसीयत ना लिख के रखी हो, क्योंकि जिंदगी किसी वक्त भी खत्म हो सकती है और मौत किसी वक्त भी आ सकती है। तो फिर क्या है, कुरान में सूरत यासीन आप में से अक्सर को हिफ्स होगी, तो उसमें आप देखें कि वहां पे भी ये आयत है ना, फला यस्ततीउना तौसियतन वला इला अहलिहिम यरजिउन, सूरत यासीन की आयत नंबर 50 है। तो उस वक्त ये वसीयत ना कर सकेंगे और ना अपने घरों को पलट सकेंगे। तो किसी की जिंदगी की 40 मंजिलें गुजर चुकी, और किसी की 20, और किसी की 60, और किसी की 80, और अभी भी हम ये सोचते हैं कि शायद दुनिया में ज्यादा रहेंगे, है ना। तो दुनिया में रहने की ख्वाहिश होना अलग चीज है, लेकिन उसके साथ साथ इस बात की फिक्र करनी चाहिए कि मौत से ज्यादा, जिंदगी से ज्यादा मौत करीब है, और मौत किसी वक्त भी आ सकती है। और हमें जो भी वसीयत से मुतल्लिक चीजें अगर हमारे पास हैं, और औलाद है, और जो भी है मामलात, तो उसमें हमें वसीयत के लिए तैयार रहना चाहिए और वसीयत करनी चाहिए। तो इसी तरह इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चों को जो वसीयत की, कोई दिरहम की, दिनार की, दौलत की नहीं थी, बल्कि क्या थी कि मेरे बाद तुमने मुसलमान बनकर रहना है, इस्लाम की तरफ तवज्जो देना, क्योंकि अंबिया जो हैं वो दिरहम और दिनार का विरसा नहीं छोड़ते, बल्कि इल्म का विरसा छोड़ते हैं, और उलमा जो हैं वो दरअसल अंबिया के वारिस हैं। और यही ताकीद याकूब अलैहिस्सलाम ने की ही, इन उन्होंने क्या कहा था, या बनिया इन अल्लाह अस्तफा लकुमुद्दीना, के ए मेरे बच्चों, ए मेरे बेटो, अल्लाह ने तुम्हारे लिए यही दीन जो है वो पसंद किया है। तो किसी आदमी को भी चुना जा सकता है और किसी चीज को भी चुना जा सकता है। तो दीन तुम्हारे लिए अल्लाह ने क्या चुना, इस्लाम चुना। और क्या करना, फला तमू तुन्ना इन्ना व अंतुम मुस्लिमून, और तुम्हें मौत ना आए यहां तक कि तुम मुसलमान हो। तुम्हें जिंदगी में जब भी मौत आए इस्लाम की हालत में आनी चाहिए। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के क्या लगते थे, पोते। तो बेटा कौन था फिर, इसहाक अलैहिस्सलाम, शाबाश। तो यहां अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद पोते का जिक्र खास तौर पर क्यों किया, इसलिए कि रसूल अल्लाह के अलावा बाकी तमाम नबी जो हैं वो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में से आए, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा। तो बनी इसराइल भी इन्हीं की औलाद में से थे, और उनके अंदर जितने अंबिया आए वो भी इन्हीं की औलाद में से थे। तो अब अल्लाह ताला बता रहे हैं यहाँ पर कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी तो यही वसीयत की थी कि इस्लाम अच्छा दीन है। उन्होंने तो नहीं कहा था यहूदी या ईसाई, यही वसीयत तो याकूब अलैहिस्सलाम कर गए। अगर याकूब अलैहिस्सलाम ने ये वसीयत की तो फिर क्या है कि उन्हीं की औलाद में तो सारे पैगंबर आए, तो वो उसी की तो वो तजदीद कर रहे थे या उसी को लेके चल रहे थे ना। तो क्या कहा कि तुम्हें भी याकूब अलैहिस्सलाम ने ये कहा था मौत नहीं आनी चाहिए, जब आए तो किस हाल में कि तुम मुसलमान हो। फिर अल्लाह ताला आगे एक सवाल पूछते हैं, और उस सवाल पूछने की वजह क्या है, कहते हैं यहूद ने एक दफा रसूल अल्लाह से आकर कहा कि क्या आपको मालूम नहीं कि याकूब अलैहिस्सलाम ने हमें यहूदी रहने की वसीयत की थी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि हम जो यहूदी हैं और मुसलमान नहीं हो रहे, ईमान नहीं ला रहे, तो उसकी वजह क्या है कि याकूब अलैहिस्सलाम ये वसीयत कर गए थे। तो कहते हैं कि ये आयत नाजिल हुई और अल्लाह ताला ने मदीना के यहूदियों से पूछा कि जब याकूब मरने के करीब थे तो क्या तुम उस वक्त मौजूद थे, क्या तुम्हारे पास इसकी कोई विटनेस है कि याकूब अलैहिस्सलाम ये वसीयत जो थे वो कर गए थे, और उन्होंने अपने मरते वक्त बच्चों से, बेटों से क्या बात की थी। तो यहूद के कॉल की आयत नंबर 133 के जरिए अल्लाह ताला ने तरदीद की, क्या कहा, अम कुन तुम शुहदा इज हादरा याकूब अल मौत, कि क्या तुम उस वक्त मौजूद थे जब याकूब अलैहिस्सलाम दुनिया से जो है वो रुखसत हो रहे थे, यानी जब उनके पास मौत हाजिर हो गई। तो जब मौत आकर हाजिर हो जाए, जब फरिश्ता आ जाए जान निकालने के लिए, तो क्या है कि वो दुनिया से जुदाई का वक्त है। तो जब उनसे दुनिया की जुदाई का वक्त था, जब वो मर रहे थे, जब उनके पास मौत आई थी, और क्या उस वक्त तुम मौजूद थे, ये क्वेश्चन मार्क है। क्या इज कॉल अले बनी ही, फिर उन्होंने अपने बच्चों से पूछा, किसने पूछा, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने, माता बुदून, तो उन्होंने क्या पूछा था कि तुम मेरे बाद किसकी इबादत करोगे। यहाँ पे बड़ी अहम बात है, उन्होंने ये नहीं पूछा था मा ताकुलूना मिन बादी, कि तुम मेरे बाद क्या खाओगे। हमें तो यही फिक्र होती है ना, बच्चे खाएंगे कहां से, रहेंगे कहां से, पहनेंगे कहां से, है ना। मरने का वक्त भी हो तो भी इर्द गिर्द की दुनिया में क्या देखते हैं, हवस है, नफसा नफसी है, लड़ाई और झगड़े हैं। तो अभी एक सवाल, एक दो चार दिन हम मेरे पास आया, उसमें क्या था कि बाप जो है उसको फालिज का अटैक हुआ और अब जहन काम नहीं करता, ठीक है, उसके नाम कुछ जायदाद है, अब बच्चे जो है वो चाहते हैं कि उसको अब तकसीम कर लें, बेचकर तकसीम कर लें। तो वो पूछ रही थी कि कैसे इसको तकसीम करना चाहिए। तो मैंने पूछा कि अभी तो बाप जो है वो फालिज हुआ है और दिमाग काम नहीं करता, तो हो सकता है जायदाद के लालच में कोई उसकी खिदमत कर दे, और अगर आपने वो जायदाद के टुकड़े को, उस जमीन को, दुकान को भी बांट दिया, तो फिर तो लोग धक्के देने लग जाते हैं अच्छे भले वालदैन को, दुनिया में हम ये देख रहे हैं ना। तो अभी इस वक्त तकसीम की बजाय जो है, यानी इसमें क्यों नजर है कि तकसीम ही उसको करना है ना। तो असल में होता क्या है कि बजाय इसके कि जो वालदैन जिंदा हैं उनकी खिदमत की जाए और जन्नत कमाई जाए, इसमें एक फिक्र होती है कि इनकी चीजें मिलेंगी किसको, कौन खा गया माँ बाप को। अक्सर घरों में यही झगड़ा है कि वो माँ बाप से फलां बहुत खा जाता है, फलां बेटा या फलां बेटी या फलां छोटा या फलां बड़ा ना। तो हमें क्या खाने पीने की और अपना वे ऑफ लिविंग और स्टेटस की फिक्र है। हम में से कोई ये नहीं सोचता फलां भाई तो ज्यादा खिदमत करता है, हम तो कम करते हैं, फलां भाई ज्यादा अम्मी को जो है वो उसकी जरूरियात, उसकी ख्वाहिशात का ख्याल रखता है, और हम तो नहीं करते, हम महरूम रह गए। हम कहते हैं अच्छा, जहां भी वो बला है वो वहीं ठीक है ना, हम बला समझते हैं, हालांकि वो रहमत है, वो जन्नत है, वालदैन रब की रजा है। तो असल बात क्या है कि उन्होंने कहा था कि तुम मेरे बाद किसकी इबादत करोगे, और याकूब अलैहिस्सलाम को जैसे अपनी औलाद की फिक्र थी, इसी तरह इससे भी बढ़कर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को फिक्र थी, है ना। तो कि मेरे बाद हमारी औलाद की नस्लों में कैसे लोग पैदा होंगे, और वो मुसलमान जो यहां रह रहे हैं, जिनकी जिंदगी में बच्चे यहूदियत और ईसाइयत इख्तियार कर रहे हैं। लड़की है, मैंने अमेरिका में थी, सवाल आया कि सिख से शादी कर ले, हिंदू से शादी कर ले, ये बिल्कुल ही गैर मुस्लिम है, अहले किताब की बात ही नहीं है, तो शादी कहाँ हो सकती है ना, निकाह हुआ ही नहीं, और मानने को तैयार भी नहीं। तो हमारी नस्लों में क्या होगा और क्या हो रहा है, इसकी हमें फिक्र करनी चाहिए। और वो जो अंबिया थे उन्होंने क्या किया, उनको ये फिक्र थी कि हमारे बाद ये किसकी इबादत करेंगे। पालू वो सब बोले ना बुदू, हम इबादत करेंगे इलाह का, आपके माबूद की, वह इलाह आबाई का, और आपके बाप दादा के माबूद की। और बाप दादा के माबूद कौन थे, अल्लाह ताला। बाप दादा ने किसकी बंदगी की, अल्लाह ताला की ना। पर बाप दादा कौन थे, इब्राहिमा व इस्माइला व इसहाका। तो याकूब अलैहिस्सलाम को उनकी औलाद ने ये जवाब दिया था कि हम अल्लाह ताला की बंदगी करेंगे, और उसी अल्लाह की बंदगी करेंगे जिसकी बंदगी आपके बाप दादा ने की। और वो किसकी बंदगी थी, इलाह वाहिदा, एक इलाह की बंदगी, नहनु लहू मुस्लिमून, और हम इसी के फरमाबरदार हैं। तो अब आप देख लें कि याकूब अलैहिस्सलाम को जाते जाते क्या फिक्र थी, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जाते जाते क्या फिक्र थी, और उनकी औलाद का उनको तसल्ली दिलाना। तो अब मुझे और आपको भी इस बात की फिक्र करनी चाहिए कि हमारे घर में क्या इस्लाम का नाम बुलंद होगा, क्या इस्लाम का कला हमारा घर बनेगा, हमारे बच्चे जो हैं वो मस्जिद को आबाद करेंगे, क्या अल्लाह का जिक्र करेंगे, क्या अल्लाह की याद होगी। हमें, हम ये तो कहते हैं कि हमें बच्चा मिलना चाहिए, वारिस होना चाहिए, लेकिन रब्बे रब्बे हबली मिन सालेहीन, वो साले होना चाहिए, वो नेक होना चाहिए, ताकि हमारे बाद अल्लाह का नाम और अल्लाह का जिक्र जो है बुलंद किया जा सके। और मुसलमान बनना ये बड़ी अहम बात है। फिर अल्लाह ताला कहते हैं तिलका उम्मतुन कद खलत, ये कुछ लोग थे, उम्मत यानी एक ग्रोह था, कुछ लोग थे, कद खलत वो गुजर गए, लहा मा कसबत, उनके लिए क्या था जो उन्होंने कमाया, वलकुम मा कसबतुम, और जो तुमने कमाया वो तुम्हारे लिए है, वला तुसअलून अम्मा कानू यअमलून, और तुमसे ये नहीं पूछा जाएगा कि तुम जो है वो क्या करते रहे, यानी वला तुसलूना अम्मा कान यामलून, कि वो क्या करते रहे, तुमसे ये सवाल नहीं पूछा जाएगा। तो असल बात क्या है कि जो यहाँ पे तवज्जो दिलाई जा रही है कि अबाओ अजदाद के अमाल की जजा और सजा औलाद पर नहीं होगी, है ना। इस आयत से क्या बात बताई जा रही है कि अगर बाप दादा के अमाल बुरे थे तो औलाद पर कोई असर नहीं पड़ेगा, अगर वो अमाले स्वाहले के पाबंद थे और फिर फिर आगे उनकी औलाद जो है वो अच्छे काम नहीं करती तो अभी उनको कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि अपने अमल जो है वो खुद करने हैं, ठीक है ना। तो इसका क्या मतलब है, क्योंकि अल्लाह ताला खुद कुरान में भी कहते हैं कि वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़्र उख़्रा, कि कोई बोझ उठाने वाला दूसरे का बोझ जो है वो नहीं उठाएगा। इसी तरह क्या है, वला तक्सिबु कुल्लु नफ्सिन इल्ला अलैहा, के हर एक के लिए वही है जो उसने जो है वो कमाई की। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर फरमाया था, ऐ बनू हाशिम, ऐसा ना हो कि कयामत के दिन और लोग तो अपने अपने अमाले सवाले लेकर आए और तुम अमाले सवाले से गफलत बरतो। तो क्या है कि अब क्या करो कि अमाले सवाले से तुम गफलत बरतो और मेरे नसब का भरोसा लेकर आओ, और मैं इस रोज तुमसे ये कहूं कि मैं तुम्हें अल्लाह के अजाब से बचा नहीं सकता। कि हसब नसब भी, जैसे सैयद होना और सिद्दीकी होना, हाशमी होना, या ऊंचे हसब नसब का होना किसी को अल्लाह की पकड़ से नहीं बचा सकता अगर उसके पास अमले सवाले नहीं है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन बत्ता बेही अमलहू लम युसरे बेही नसबहू, जिस शख्स को उसके अमल ने पीछे डाला, यानी उसने अमल में सुस्ती की, इसका नसब इसको आगे नहीं बढ़ा सकता। तो असल चीज क्या है कि अमल करना। चाहते सब हैं कि हो औजे सुरैया पे मुकीम, पहले वैसा कोई पैदा तो करे कल्बे सलीम, यानी मुसलमान होना और कल्बे सलीम पैदा करना ये बहुत अहम बात है। और हम ख्वाहिश तो सभी रखते हैं लेकिन अमल हमारे वैसे नहीं है जैसी हमारी ख्वाहिशात है। इल्लामा इकबाल ने इसी बात को कहा था, तुझे आबा से अपने कोई निस्बत हो नहीं सकती, कि तू गुफ्तार वो किरदार, तू साबित वो सैयारा, गंवा दी हमने जो असलाफ से मीरास पाई थी, सुरैया से जमीन पे आसमान ने हमको दे मारा। तो अपने अबाओ अजदाद की अगर हम कहानियां पढ़ें, उनके किस्से पढ़ें, तो आप देखेंगे आज के मुसलमानों के हालात और उस दौर के मुसलमानों के हालात, कि लोग नाम नाम मुसलमानों के नामों से डरते थे। और उमर फारूक रजी अल्लाह नो जो थे वो अमीरुल मोमिनीन थे, वक्त के खलीफा थे, और कोई उनकी स्पेशल पुलिस नहीं थी, कोई जो था वो दरबान और चौकीदार और पुलिस मैन नहीं खड़े होते थे हैं, और अपने हाथों का तकिया बनाकर पैवन लगे कपड़े पहनकर वो नीचे जो थे वो बड़ी आराम की और सुख की नींद सोया करते थे, इसलिए कि वो बाअमल लोग थे। और आज के अगर हुक्मरानों को देखें तो एक की गाड़ी गुजरनी होती है तो 10 ऐसी गाड़ियां गुजरनी होती हैं कि उन 10ों में से कोई एक गाड़ी हुक्मरान की होगी ताकि कोई उसको शूट ना कर दे। और हटो बचो और ट्रैफिक का ब्लॉक होना और हिफाजती इंतजाम का होना और चेकिंग होना, कितने कुछ है ना, कितनी बातें हैं। तो असल चीज क्या है कि असल चीज जो है वो अमल है। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, वकालू कूनू हूदन औ नसारा तहतदू, यहूदी कहते हैं कि यहूदी हो जाओ तो हदायत मिलेगी, हदायत पाओगे, और ईसाई कहते हैं कि ईसाई हो जाओ तो हदायत जो है वो मिलेगी, क्योंकि वो अपने अपने बारे में ये बात जो थे वो कहते थे। तो अल्लाह ताला क्या कहते हैं, कुल बल मिल्लत इब्राहिम हनीफा वमा काना मिनल मुश्रिकीन, बल्कि सबको छोड़कर इब्राहिम अलैहि सलाम का तरीका, और इब्राहिम अलैहि सलाम मुश्रिकों में से ना था। अब आप देख लें, वो ये कहते थे कि ये हमारे बाप दादा हमें वसीयत कर गए हैं, अल्लाह ने इसकी जो है वो नफी की है, और खुद बाइबल में भी तलमूद में भी उनकी वसीयत के कुछ अल्फाज जो है वो मिलते हैं जो कुरान से काफी मिलते जुलते हैं। याकूब अलैहिस्सलाम ने जाते हुए ये कहा था, खुदावंद अपने खुदा की बंदगी करते रहना, वो तुम्हें उसी तरह तमाम आफात से बचाएगा जिस तरह तुम्हारे बाप दादा को बचाता रहा। अपने बच्चों को अल्लाह से मोहब्बत करने और इसके अहकाम बजा लाने की तालीम देना ताकि इनकी मोहलत जिंदगी दराज हो, क्योंकि अल्लाह इन लोगों की हिफाजत करता है जो हक के साथ काम करते हैं और इसकी राहों पर ठीक ठीक चलते हैं। जवाब में उनके लड़कों ने कहा, जो कुछ आपने हदायत फरमाई है हम इसके मुताबिक अमल करेंगे, खुदा हमारे साथ हो। तब याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर तुम खुदा की सीधी राह से दाएं या बाएं ना मुड़ोगे तो खुदा जरूर तुम्हारे साथ रहेगा। तो अब ये इसी तरह अगर आज मुसलमानों को देखें, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ तो मुसलमान भी हो। आज हम भी तो यही कर रहे हैं ना, फलां फिरका अच्छा है, फलां जमात अच्छी है, फलां तरीका अच्छा है, फलां मस्जिद अच्छी है। मस्जिदें सब अल्लाह के घर और दीन एक ही है। आज मुसलमानों के दिल आपस में फटे हुए हैं, मुसलमान टुकड़े टुकड़े हैं, है ना, फिरका बंदियां हैं। क्या जमाने में पनपने की यही बातें हैं कि क्या इस तरह मुसलमान तरक्की कर सकते हैं? नहीं। मुसलमान अगर अपने हालात को बदलना चाहते हैं और अपने अपनी जिंदगी को रोशन करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि वो दोबारा औजे सुरैया पे मुकीम हो, बुलंदियों पे जाएं, वो फिर से तरक्की करें और फिर वो जिस काम के लिए अल्लाह ने उनको चुना था, उम्मते वस्त, वो फिर से अगर वो उस पर जो है वो रहना चाहते हैं तो फिर क्या है कि उनको ये काम करना होगा कि नेकी का हुक्म देना, बदी से मना करना और एक होकर इकट्ठा होना होगा। तो क्या है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तरीका, मिल्लत यानी तरीका इख्तियार कर लो, हनीफा, वो हनीफ थे। कैसे थे? कि उनके अंदर जर्रा बराबर भी शिर्क नहीं था, जर्रा बराबर इधर उधर तवज्जो नहीं करते थे, खालिस अल्लाह की तरफ वो यकसू थे। जैसे हम करते तो हैं पर यकसू ही नहीं है हमारे अंदर दीन इस्लाम पर अमल करने में। कभी किसी की कोई चीज पसंद आ जाती है, कभी किसी का तरीका पसंद आ जाता है, कभी किसी की कोई रस्म सोचते हैं कि ये शायद अच्छी हो सकती है। हम जो है वो बेबी शावर जरूर कर लेते हैं लेकिन हो सकता है अकीका ना करें, तो इसी तरह वैलेंटाइन डे तो मनाएंगे, आज के मुसलमान मना रहे हैं, लेकिन इन्नमल मुमिनून इख्वा, ये बात समझ में नहीं आई कि मोमिन तो भाई भाई हैं, सिस्टरहुड और ब्रदरहुड, और सबके हुकूक जो हैं दर्जा बर दर्जा। तो यहां पर क्या है कि वो तो हनीफ थे, जो अल्लाह ने कह दिया उसको उन्होंने इख्तियार किया और मुशरिकों में से ना थे। यहां पे ये बात बड़ी अहम है कि असल में मुशरिक ये कहते थे, मक्का के जो मुशरिक थे बनी इस्माइल की जो औलाद में से, वो कहते थे कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम हम में से थे। यहूदी कहते थे नहीं वो हम में से थे, ईसाई कहते थे नहीं वो हम में से थे। तो अल्लाह ताला ने कहा कि ना तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम यहूदी थे, ना तो ईसाई थे, ना तो वो मुशरिक थे, फिर वो थे क्या? मुस्लिम हनीफ। कुलू आमन्ना बिल्लाहि वमा उन्ज़िला इलैना वमा उन्ज़िला इला इब्राहिम व इस्माइल व इसहाक व याकूब वल असबात। कहो कि हम ईमान लाए, ये कौन कहे? तमाम मुसलमान ये कहें कि हम ईमान लाए अल्लाह पर और उस हदायत पर जो हमारी तरफ नाजिल हुई, और वही हदायत जो प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई और जो मुसलमानों के लिए है, वही तो है जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम और औलाद याकूब अलैहिस्सलाम की तरफ नाजिल हुई थी। उससे हटकर तो कुछ नहीं था, गोया कि मिल्लत एक ही थी, दीन एक ही था, और वो क्या था कि सबका एक ही था। वमा ऊतिया मूसा व ईसा वमा ऊतिया नबीयूना मिन रब्बिहिम, और जो मूसा अलैहिस्सलाम को दिया गया और ईसा अलैहिस्सलाम को और दूसरे तमाम पैगंबरों को उनके रब की तरफ से दिया गया। हमें इन सब पर ईमान लाना है। जैसे हमें किताबों के नाम मिलते हैं, तौरात है, इंजील है, जबूर है ना, तो कुरान मजीद है, और बाकी अंबिया को भी कुछ सहायफ जो है वो मिले हैं, सहीफे मिले हैं, कुछ तालीमात मिली हैं, और बाद ऐसे थे जो पिछले की तजदीद करने के लिए आए, है ना। तो अब आप देख लें कि ये जो कुछ उम्मते मुस्लिमा को मिला, अल्लाह ताला खुद कुरान में भी कहते हैं ना सूरत आला में, इन्ना हाजा लफी सुहफिल उला सोफे इब्राहिमा व मूसा। तो मुसलमानों को क्या करना है? सब पर ईमान लाना है। जो कुछ भी नबियों को मिला, सब का सब जो है वो अल्लाह की तरफ से मिला, और चलना किस पर है? कुरान मजीद के मुताबिक। कहा कि ये ऐलान किया करो कि ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिनहुम नहनु लहू मुस्लिमून। हम ये जो अंबिया हैं इनके दरमियान कोई तफरीक नहीं करते कि फलां हक पर था और फलां जो है वो हक पर नहीं है, बल्कि क्या है कि सबको मानते हैं, सब अल्लाह की तरफ से थे, एक ही सदाकत और एक ही हदायत की वो दावत देने के लिए आए, तो सबको तस्लीम करना है। लेकिन पैरोकारी किसकी करनी है? प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करनी है। فرمایا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے یہ مسلمان ہیں، یعنی ہم اللہ ہی کے لیے مسلمان ہیں، ہم اللہ کے ہیں۔ تو اس سے کیا بات ہمیں سمجھ میں آئی؟ ہم کسی بھی سکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتے ہوں، ہم کسی بھی جماعت کو یا جگہ کو پسند کرتے ہوں، لیکن یہ دیکھنا چاہیے کہ دل کا قبلہ درست رہے، یعنی ہم اللہ کے ہو کر رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ کی بجائے پھر کچھ اور کی طرف جانے لگے۔ تو اس چیز کا خیال رکھنا اور صحیح دین کی طرف رہنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ ہی کے مسلم ہیں، ہمیں اللہ ہی کی اطاعت کرنی ہے، ہمیں اللہ ہی کے احکامات کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، بس اگر وہ اسی طرح ایمان لائیں جس طرح تم ایمان لائے ہو تو ہدایت پر ہیں، یعنی اگر یہود و نصارہ جو ہیں وہ اسی طرح ایمان لے آتے ہیں جیسے کہ مسلمان ایمان لائے ہیں، تو پھر تو وہ ہدایت پر ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے اس بات کا اعلان کر رہے ہیں۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اور اگر وہ جو ہے منہ پھیر لیں تو وہ ہٹ دھرمی میں پڑ گئے ہیں، اگر وہ اس کا جو ہے انکار کر دیں تو کیا ہے کہ وہ ہٹ دھرمی پر اتر آئے ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تو اطمینان رکھنا کہ ان کے مقابلے میں اللہ ہی تمہاری حمایت کے لیے کافی ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہی سنتا ہے اور وہی جانتا بھی ہے۔ تو اب یہاں پر جو بات بتائی جا رہی ہے وہ کیا ہے کہ ایمان جو ہے سب پر لانا ہے، لیکن اطاعت پیارے رسول کی کرنی ہے، اور اب یہ یہود و نصارہ کو بھی ایسا ہی کرنا چاہیے، اگر وہ ایسا کر لیں تو ہدایت پر ہیں، اور نہ کریں انکار کریں تو پھر کیا ہے وہ انکار پر ہیں۔ اور ہر دور میں جب بھی جو ہے کسی بھی امت میں شرک آ گیا، جہالت آ گئی، فساد فی الارض جب ہونے لگا، تو پھر کیا ہے کہ جب وہ گروہوں میں بٹ گئی تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے پھر نبی بھیجے تاکہ ان کو عقائد کی اور اعمال کی جو ہے وہ ترغیب دیں اور ان کو بتائیں۔ تو جب نبی آتا تھا تو کچھ احکامات کو منسوخ کر دیتا تھا اور کچھ احکامات ان کو نئے دے دیے جاتے تھے، اور ہر دور میں ہر امت کے لیے اس دور کے نبی کی کا اتباع ضروری تھا۔ تو یہاں پہ بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ اے یہود و نصارہ، اے اہل کتاب، تم اللہ کی اطاعت اختیار کرو، اور اگر وہ نہ اختیار کریں تو پھر مسلمانوں کو طریقہ بتایا جا رہا ہے، یعنی اگر وہ ہٹ دھرمی اختیار کریں تو تم نے ہٹ دھرمی اختیار نہیں کرنی بلکہ اللہ ہی پھر اس کا فیصلہ کرے گا کہ پھر اب کیا ہونا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اگر وہ نسل پرستی کو جو ہے پسند کرتے ہیں، اگر وہ آباؤ اجداد کی اندھی تقلید کرتے ہیں اور وہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار نہیں کرتے، تو پھر اللہ ہی اس کا جو ہے نا وہ فیصلہ کرے گا، اللہ ہی اس کے لیے کافی ہے، وہ سنتا بھی ہے جانتا بھی ہے کہ ان کے عمل کیسے ہیں۔ اب پھر دوبارہ جو ہے توجہ دلائی جا رہی ہے کہ تم جو ہے وہ کیا کرو کہ مسلمان بن جاؤ۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہودیوں کے ہاں ایک رسم تھی کہ جب کوئی شخص مذہب میں داخل ہوتا اور اس کو غسل دیتے اور کہتے کہ اس کے سب سابقہ گناہ دھل گئے، اور عیسائی اس غسل میں جب غسل دیتے، عیسائی بھی غسل دیتے تھے لیکن وہ زرد رنگ کا پانی کرتے تھے، یعنی پانی میں زرد رنگ ملا دیتے تھے، اور یہ غسل صرف مذہب میں نئے داخل ہونے والوں کو نہیں دیتے تھے بلکہ کیا کرتے تھے، جو نئے بچے ہوتے تھے نا، جو پیدا ہوتے تھے، نو مولود بچہ، اس کو بھی جو ہے وہ غسل دیتے تھے اس طرح کے رنگ میں، اور اس کے لیے وہ استباغ جو ہے اس کا لفظ استعمال کرتے تھے، اس رسم کو اس کا نام دیتے تھے، یا بپتسما۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان رسمی رنگوں میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا رکھا ہے، یعنی یہ جو بعض رسموں کے رنگ ہوتے ہیں نا، اس کی بجائے کیا کہا، صبغت اللہ، اللہ کا رنگ اختیار کرو، اور وہ کیا ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ سِبْقًا وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور اس کے رنگ سے اچھا اور کس کا رنگ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سوال پوچھ رہے ہیں کہ لوگوں بتاؤ کہ اللہ کے رنگ سے بھی اچھا کسی کا رنگ ہو سکتا ہے، اور وہ رنگ کیا ہے، عبادت کا رنگ، وہ کیا ہے، بندگی کا رنگ، وہ کیا ہے، اسلام کو اختیار کر لینے کا رنگ، وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کی اطاعت کرنا، اپنی زندگی کے ہر گوشے میں، زندگی کے ہر کونے میں हर आदत में जो है वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपने आप को ढाल लेना। तो हमारा लेकिन हाल क्या है, जो मैं सर बसजदा हुआ कभी तो जमीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। इसीलिए इलामा इकबाल ने कहा था, या बंदा खुदावन या बंदा जमाना, फैसला कर ले। तो हमें किसकी इबादत करनी है, अल्लाह की। कुल अतुहा जूनना फिल्लाहि व हुवा रब्बुना व रब्बुकुम। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहो क्या तुम अल्लाह के बारे में हमसे झगड़ा करते हो। क्योंकि वो झगड़ा करते थे ना, वो कहते थे कि नहीं हमें तो ये बताया गया है और हम ही अल्लाह के चहेते हैं, और बहुत सी उनकी जो बातें थी, और वो कहते थे हमने अल्लाह का रंग इख्तियार किया है ना। तो अब जो है अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इनसे पूछो कि क्या तुम अल्लाह के बारे में हमसे झगड़ा करते हो, वो हमारा रब भी है और तुम्हारा रब भी। यानी अल्लाह का रंग पानी से नहीं चढ़ता, रंगों से नहीं चढ़ता, अल्लाह का रंग जो बंदगी का रंग है ना, ये अमल करने से चढ़ता है, बंदगी का तरीका इख्तियार करने से चढ़ता है। और वो अल्लाह तो हमारा रब भी है और तुम्हारा रब भी। वलना आमालुना वलकुम आमालुकुम, हमारे लिए हमारे अमाल और तुम्हारे लिए तुम्हारे अमाल। तो अब यहाँ पर ये तवज्जो दिलाई जा रही है कि अपने आप को अल्लाह के रंग में रंगो और अल्लाह की बंदगी इख्तियार करो, यहूदियत नसरानियत और मुशरिकियत यानी इन सबको छोड़कर अल्लाह की बंदगी इख्तियार करो। और आज भी हमें भी मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट या मुख्तलिफ जमातें या मुख्तलिफ चीजें, बाद में छोटे छोटे फ्रोई या मुख्तलिफ इख्तलाफात हैं, तो उनको ज्यादा रवाज देने की बजाय अल्लाह की बंदगी को रवाज देना चाहिए, इकट्ठे होना चाहिए मुसलमानों को। हम तो इसी पर लड़ते रहते हैं कि रफा या दैन करना है कि नहीं करना, आमीन बिल जहर होगा या आमीन आहिस्ता से होगा। भाई तुम नमाज तो पढ़ो, दिल चाहता है तो रफा या दैन कर लेना, नहीं समझते ठीक तो नहीं करना। अगर तुम समझते हो कि आमीन जोर से कहना है तो जोर से कह लेना, अगर समझते हो आहिस्ता तो आहिस्ता। लोग कहते हैं नहीं हम नमाज ही नहीं पढ़ते, समझ नहीं आती आमीन ऊंचा कहना कि आहिस्ता, रफा या दैन हाथों को ऊंचा करना के नीचे, हम नमाज ही नहीं पढ़ते। जो समझ में आ रहा है उसके मुताबिक पढ़ें, सीखें, समझें क्या सही है क्या गलत। लेकिन असल बात क्या है, नमाज तो पढ़ो, अल्लाह की बंदगी का रंग तो अपने ऊपर जो है वो इख्तियार करो, ये ना कि झगड़ों में जिंदगी जाया कर दो। और दीन ऐसी चीज नहीं है दूसरों के लिए छोड़ दी जाए, तो अमल ही काम आने हैं। और अल्लाह ताला ने यहाँ पे भी फिर ऐलान किया कि हम अल्लाह ही के लिए अपनी बंदगी को खालिस कर चुके हैं। तो यहाँ पर क्या है कि जबरदस्ती किसी को मुसलमान नहीं बनाया जा सकता, तो क्या है कि खुद इबादत इख्तियार करनी होगी और बंदगी में शिर्क नहीं होना चाहिए, दो रंगी नहीं होनी चाहिए, एक रंग। फिर फरमाया अम तकुलूना इन्ना इब्राहीमा व इस्माइला व इसहाका व याकूबा वल असबाता कूनु हुदन औ नसारा, क्या तुम ये कहते हो कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम और औलाद याकूब अलैहिस्सलाम सब के सब यहूदी थे या ईसाई थे, तुम क्या बात कहते हो। कुल अअन्तुम आलमु अमिल्लाह, कुल अअन्तुम आलमु अमिल्लाह, इनसे पूछो कहो तुम ज्यादा जानते हो या अल्लाह, तुम्हारे पास ज्यादा इल्म है या अल्लाह के पास। वमन अस्लमु मिम्मन कतम शहादतन इंदहु मिन अल्लाह वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तअमलून, और उस शख्स से बढ़कर जालिम और कौन होगा, उस शख्स से बढ़कर ज्यादा जुल्म और कौन करेगा जिसके जिम्मे अल्लाह की तरफ से एक गवाही हो और वो उसे छुपाए। और अल्लाह तुम्हारी हरकत से गाफिल नहीं है। उनके पास क्या गवाही थी, उनके उलमा को ये पता था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में और कुरान के बारे में उनकी किताबों में लिखा हुआ था कि वो आने वाले हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन थे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ ही तो थे। आपने कहा भी मैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ हूं, तो उन्होंने क्या किया कि इस गवाही को छुपाया, उन्होंने क्या किया कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार किया और उसका इकरार ना किया। क्यों, उनको ये हुआ कि ये रसूल जो है ये हम में से नहीं आया, और वो ये समझते थे कि हम अल्लाह के चहीते हैं, हम अल्लाह के बेटे हैं, तो सारे इनामात तो हम पर ही होने चाहिए। तो ये क्या हुआ कि प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी जो है वो बना दिया गया। तो अब यहां पर जो है क्या बात बताई जा रही है कि तुमने गवाही जो है वो छुपा ली, और गवाही के सिलसिले में खा वो कोई भी गवाही हो, अगर हम उसको छुपाते हैं तो ये गुनाह कबीरा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह की नमाज पढ़ाई और जब लोगों की तरफ रुख फेरा तो बैठे रहने की बजाय आप सीधे खड़े हो गए, और 3 बार फरमाया झूठी गवाही देना और शिर्क करना दोनों बराबर के गुनाह हैं। फिर आपने फरमाया कि तुम लोग क्या करो कि बुतों से दूर रहो और झूठी बात कहने से दूर रहो और अल्लाह से यकसू हो जाओ, शिर्क छोड़कर तौहीद इख्तियार करो। तो क्या है कि झूठी गवाही, इसी तरह बाज लोग कसम में झूठी खा लेते हैं, जैसे तलाक दी और दे दी पूरी हो गई, लेकिन बीवी कहती है कि, अब शौहर कहता है कि नहीं नहीं वो मैंने नहीं दी थी ना, तुमने ऐसे उसको समझ लिया था। और भी इस तरह की बहुत सी बातें हमारी समझ में आती हैं, सुनने में आती हैं। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि ये जुल्म है, और हदीस से पता क्या चलता है कि ये गुनाह कबीरा है। तो जिसके जिम्मे भी अल्लाह की तरफ से एक गवाही हो और वो उसको छुपाए, तो क्या है कि दुनिया से छुपा ले, दुनिया की सजा से बच जाए। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून, लेकिन अल्लाह तो तुम्हारी हरकत से गाफिल नहीं है। तिल का उम्मत उनकद खलत, वो कुछ लोग थे जो गुजर गए। लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम वला तुसअलून अम्मा कानू यअमलून, उनकी कमाई उनके लिए थी और तुम्हारी कमाई तुम्हारे लिए, तुमसे उनके अमाल के मुतल्लिक सवाल जो है वो नहीं पूछा जाएगा। यही अल्फाज जो हैं आयत नंबर 134 में भी आप पढ़ चुकी हैं। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उखरवी निजात के लिए अंबिया पर या नेक लोगों पर भरोसा करके मत बैठो, तुम अपने अमाल के खुद जिम्मेदार हो, खुद जवाब दे हो, और तुम्हें अपने अमाल की सजा या जजा जो है वो भुगतनी होगी। तो क्या करना चाहिए, अपने आप को संवारने की फिक्र करनी चाहिए और अपने आप को नेक बनाने की फिक्र करनी चाहिए और बंदगी का रंग अपने ऊपर चढ़ाना चाहिए। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।